Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad presented by Purna Pragyaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो इसी का यहाँ जब तक विवेक नहीं करेंगे बात बनती नहीं है। तो संविद मात्र जो दृष्टि है वह असंबद्ध दृष्टि है। एक वाक्य आप लोग लिख लो, कहा संविद मात्र जो दृष्टि है, संविद अर्थात ज्ञान मात्र जो दृष्टि होती है वह असंबद्ध दृष्टि होती है। तो जितना जितना आप असंबद्ध माने उसकी उसमें कोई संगति लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। ज्ञान मात्र दृष्टि में आपको संगति लगाने की संबंधों के साथ कोई आवश्यकता नहीं है। तो जब संविद मात्र है तो उसके साथ कार्य कारण का संबंध नहीं है। तो ये जैसे कार्य कारण का संबंध नहीं है वैसे ही ज्ञाता ज्ञेय का भी संबंध नहीं है। और वैसे ही क्योंकि ज्ञाता ज्ञेय का संबंध हम तब बनाते हैं जब बीच में करण को रखते हैं। करण औजार इंद्रियों को जब हम बीच में रखते हैं तो ज्ञानेन्द्रियों को रखकर हम ज्ञाता ज्ञेय का संबंध बनाते हैं। वह भी नहीं है, भोक्ता भोग्य भी नहीं है। एक क्वार्ट आने से सब समझते हैं। तो जब कार्य कारण का संबंध नहीं हुआ और केवल संविद मात्र ज्ञान मात्र अनुभूति मात्र आपका आत्मा ही है और उसी में सब फुरफुरा रहा है, जैसे आकाश में शरद ऋतु में फुहिया बादल फुहिया की तरह फुरफुराते हैं और अस्त हो जाते हैं, वैसे ये स्वप्न जागृत फुरफुराता है, सुषुप्ति में अस्त हो जाता है। आप चिन्ह मात्र चिदाकाश मात्र हैं और उसमें ये दुनिया दिखती है और अस्त होती है। तो किसका किससे संबंध बनाएंगे? जब तक संबंध बनाते बनाते हैं तब तक मिट जाता है। आकाश में बादलों को देखकर हम यह बनाते हैं कि वहां पर बारात जा रही है, वो शिवजी की बारात है, वो इंद्र जा रहा है, वो फलाने जा रहे हैं, वो रावण जा रहा है, 10 सिर वाला, ऐसे ऐसे हम बनाते हैं तब तक तो आकार मिट जाते हैं। हम लोग उत्तराखंड में आ रहे थे तो जहां पर श्रीनगर में जहां अलकनंदा बहती है बद्रीनाथ से उतरकर, तो एक श्रीनगर परियोजना है तो उधर उधर एक धारी देवी माता का मंदिर है तो उन पर बड़ा संकट है, वो डूब में आ जाएंगी। तो हम लोग उन माता के और वो धारी माने पूरे हिमालय की वो धुरी है, ऐसे प्राचीन मान्यता है क्योंकि वो पर्वत रूप में ही देवी है। अब वो बोलते हैं, सरकार बोलती है कि हम मंदिर को उठा लेंगे, तो कहां उठा लोगे तुम, वो तो पर्वत रूप में है। तो खैर जो भी, तो हमें बहुत लोगों ने कहा तो हम लोग दर्शन करने गए, लौट रहे हैं दर्शन करके तो ये आकाश में बादल और उनमें सूर्य का उसमें प्रतिभास, तो इस तरह से बना था कि बादल बिल्कुल भारतवर्ष के नक्शे की तरह और उनकी चारों ओर से ही प्रकाश निकल रहा, जैसे मान लो आपको टीवी में दिखाएं। तो हमने कहा जो साथ में थे उन लोगों से, देखो देखो आकाश में भारतवर्ष का नक्शा बना है और ये प्रकाश की किरणें उसके चारों ओर छिटकी हुई है, बिल्कुल ऐसा ही। तो किसी को थोड़ा चमका न चमका तब तक वृक्ष आ गए, मकान आ गए, तो ड्राइवर ने कहा कि आप चिंता मत करो, मैं आगे जाके ऐसी जगह मोटर रोकूंगा, क्योंकि हिमालय का ड्राइवर उसे सब मालूम, जहां से आकाश आपको स्पष्ट दिखेगा। अब जब तक उसने रोका तब तक तो दृश्य चला गया। तो ऐसे ही आप कहीं भी संबंध बनाने जाते हैं तब तक तो दृश्य चला जाता है। और इसलिए कहा कि बुद्धिमानी में इसी में है कि संबंध मत बनाओ। तो इसलिए ये प्रागेकत्व विज्ञानात के द्वारा ये कह रहे हैं कि आप अपने साधन सामग्री को न छोड़ें जब तक आपको, जैसा आपको पहले बता दिया गया है वैसे करें ना, क्योंकि विवेक ही नहीं जागृत होगा तो विवेक के बिना आप आश्रय और विषय, अज्ञान का आश्रय और विषय ज्ञान है, ये कैसे जानेंगे? इसके बिना नहीं जानेंगे, वो सूक्ष्म होना चाहिए। नेह नानास्ति किंचना, यहाँ कह रहे हैं यहाँ नाना तो कुछ भी नहीं है। तो इसमें यथार्थ ज्ञान जब तक नहीं होता है, तो यथार्थ ज्ञान क्या है? कहा मैं का यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। मैं आपका, मैं ही यथार्थ सत्य है, अहम। वह अहमर्थ, शुद्ध अहम को अहमर्थ कहते हैं, अर्थात अहम के द्वारा जिस अर्थ को द्योतित किया जाता है, लखाया जाता है, तो वह मैं और यथार्थ सत्य परमात्मा वो एक हैं। प्राग एकत्व विज्ञानात, तो कहा कि ये दोनों एक हैं। और यह जो एकत्व विज्ञान है, विज्ञान के द्वारा ये कह रहे हैं कि उसका बुद्धि में उल्लेख होना चाहिए कि आपका जो आत्म चैतन्य है वह परमार्थ सत्य है, इसका बुद्धि में उल्लेख होना चाहिए। आत्मा से यथार्थ सत्य, यथार्थ परमार्थ, यथार्थ न कह के परमार्थ भी कह सकते हैं, वह जूता नहीं है, ये अलग नहीं है। तो यदि सत्य अलग होता है, सत्य परमात्मा अलग और आपका मैं चैतन्य अलग, तो या तो आप उसको देखेंगे जैसे घड़े को देखते हैं, तो वह दृश्य हो जाएगा, आप उसको देखेंगे पृथक करके, अथवा तो आप कहेंगे नहीं नहीं वो बहुत बड़ा है, हम उसे देख कैसे सकते हैं, तो परोक्ष हो जाएगा, अर्थात कल्पित हो जाएगा, कल्पित हो जाएगा। और वह यथार्थ सत्य कल्पित हो जाएगा, तो कल्पित के साथ, उस परोक्ष के साथ आपकी एकता कभी नहीं होगी और आप जान नहीं पाएंगे। इसलिए कहा कि ये साधन तो तब छोड़ो जब एकत्व विज्ञान हो जाए, एक बात। दूसरी बात कि आप जो सुनते हैं कि वह निराकार है, निर्गुण है, निर्विशेष है, ऐसा जो अद्वितीय है, अपरिच्छिन्न है, अभेद रूप है, परिपूर्ण है, तो अविनाशी है, परिपूर्ण है देश काल दृष्टि से, तो ये सब जो आप सुनते हैं यह सब कल्पित होगा, दृश्य होगा, ये शब्द मात्र रह जाएंगे आपके लिए। शास्त्र की क्या उपयोगिता जब आपके लिए ये सब कल्पित होगा, दृश्य होगा, तो इसकी क्या उपयोगिता? क्योंकि जो निर्गुण निर्विशेष इत्यादि हम बोलते हैं, निराकार आदि, तो आप तो बीच में खड़े हैं, और आप जो परिच्छिन्न बनकर और बीच में खड़े हैं, तो आप उसको अद्वितीय कहाँ रहने देते हैं? उस परमार्थ सत्य को सद्वितीय तो आपकी सुभग मूर्ति बना रही है, आप ही उसको सद्वितीय बना रहे हैं। तो वहां आपका अर्थ क्या होगा? द्वैत। आपका अर्थ द्वैत, आप अर्थात नाना, अनेकता, तो आप ही द्वैत बना रहे हैं। तो क्या आप सचमुच द्वैत रूप हैं? यह प्रश्न उठता है, क्योंकि आपने अपने विशुद्ध स्वरूप का अनुभव नहीं किया, इसलिए आप अपने को, अच्छा शास्त्र क्या कह रहे हैं, शास्त्र क्या कह रहे हैं ना, गुरु क्या कह रहे हैं? तो कहा कि आप संवित स्वरूप, ज्ञान स्वरूप भी बनते हैं, साक्षी भी बनते हैं, दृष्टा भी बनते हैं, कि हम संवित हैं, साक्षी हैं, दृष्टा हैं, और फिर आप अद्वितीय हैं या नहीं, ये वेदांत प्रश्न उठाता है, और ये वेदांत ही आपको ये बात समझाएगा। तो वह परमात्मा क्या आपसे भिन्न है या अभिन्न है? यदि वह आपसे भिन्न है तो वह चैतन्य नहीं हो सकता, वह मूर्छित हो जाएगा, वह बेहोश हो जाएगा, वह जड़ हो जाएगा। और यदि आप उससे भिन्न है तो आप परिच्छिन्न होंगे, आप टुकड़े टुकड़े होंगे। इसलिए दोनों के एकत्व का विज्ञान का बुद्धि में उल्लेख आवश्यक है, क्योंकि भ्रम बुद्धि में बैठा है, तो वहीं भ्रम की निवृत्ति होनी चाहिए। दूसरी बात कि जैसे जड़ की खोज करते हैं वैज्ञानिक, प्रयोगशाला में बैठ के बाह्य वस्तुओं की खोज की जाती है, क्या उसी प्रकार से चैतन्य की खोज होगी? ये प्रश्न उठता है। क्या उसी नहीं, दोनों में भेद है, क्योंकि यहाँ आगे इसलिए बताएंगे कि वो हृदय में ही विराजमान है। तो आपके आपका जो अहमर्थ है उसके भीतर रहकर वो अहमर्थ को प्रकाशित करने वाला है वह परमात्मा, और स्वयं अपना स्वरूप है। मनसे वेदम आप्तव्यम कह के यह कहा जा रहा है, तो उसको आप अपने आप से प्राप्त करें। तो प्रारंभ में जो भ्रम है, पहले भ्रम होता है, और भ्रम से आक्रांत बुद्धि से क्या आप उसको ढूंढ लेंगे? अथवा तो कहा नहीं, हम आसन धारणा ध्यान प्राणायाम ये समाधि आदि का अभ्यास करके और ढूंढ लेंगे। कोई ऐसे सोचते हैं, कुंडलिनी जागृत करके ढूंढ लेंगे। कोई कहते हैं कि हम कोई चमत्कारी साधु ढूंढ रहे हैं जो हमारे सिर पर हाथ रख दे और तत्व ज्ञान हो जाए, ब्रह्म ज्ञान हो जाए। तो चमत्कारी साधु को ढूंढते हैं, कोई भूत को, कोई प्रेत को ढूंढते हैं, भूत प्रेत भी ढूंढते हैं। तो भूत प्रेत कर देगा, अथवा देवता, कोई दानी देवता कर देगा। तो इस प्रकार से जो ज्ञान की, तो कहा इस प्रकार से ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। तो पूर्व के जो संस्कार पड़े हुए हैं इस अनेक प्रकार के, उनको काटने के लिए आचार्य और आगम के संस्कार चाहिए। संस्कार को संस्कार काटेगा, उसको काटने के लिए वो संस्कार चाहिए। कोई किसी ने कहा कि स्वप्न में हमने आपको ऐसे देखा, स्वप्न में देखा कि आप हमको एक, अभी कुछ ही दिन पहले, दो चार दिन पहले फोन था दिल्ली से, तो कहा कि हम बोल रहे हैं कि आपको सब याद रहता है, स्मरण रहता है, हमें क्यों नहीं रहता? तो आपने हमें एक बहुत लंबी माला दी और कहा बेटा इसका जप करो, फोन में बोले। तो हमने कहा अच्छी बात है, माला ही दी। लेकिन वहाँ क्या है कि संस्कारों के कारण आप माता जी को देख रहे हैं, माला को देख रहे हैं, और संस्कार, क्योंकि स्वप्न में बुद्धि अपने हाथ में नहीं होती, मन जो होता है वह मन कोई व्यवस्थित मन नहीं होता है, इसलिए कल को दूसरा स्वप्न देख लेगा। इसलिए तो वो तो समझदार है, थोड़ा वेदांत सुने हैं, तो पूछ रहे हैं कि हम स्वप्न को माने ना माने, क्या हम बहुत जप करने लगे, ऐसे पूछ रहे हैं। लेकिन क्या है कि हजारों कल्पनाएं आपकी बुद्धि में बैठी हुई हैं, तो और इसलिए बाधा क्या बन रही है कि हम अयथार्थ को लेकर, अनात्मा को लेकर, द्वैत को लेकर जो हजारों कल्पनाएं बुद्धि में बिठा रखे हैं और उसके कारण विवेक नहीं होता है, ये हमारी बाधा है। तो असत्य, असत्य अपरमार्थ परिच्छिन्न द्वैत जड़ ये अनात्मा, इसको हम कैसे हटाएं, ये प्रश्न है। तो कहा कि जब बुद्धि को, उसको हटाना नहीं है, बुद्धि से जब आप यथार्थ ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो वो हटा हटाया, उसको पहले ठोस सिद्ध करो फिर उसे हटाने जाओ। इसलिए एक बात कहा था कि असंबंध में संबंध की कल्पना हो रही है, ये आत्म तत्व या संबित, इसका किसी से संबंध नहीं है, केवल हम कल्पना कर करके और उसको बना रहे हैं। तो जो संस्कारों से अभिभूत बुद्धि है, संस्कार जो बुद्धि को अभिभूत करते रहते हैं, भूत प्रेत के संस्कार, इसलिए लाए कि एक बालक आता है हमारे पास बहुत पढ़ा लिखा, वो बोलता है कि हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि भारतवर्ष में अधिकांश लोग भूत प्रेत को मानते हैं और भूत प्रेताविष्ट होते हैं, शहरों में भले नहीं भी हो तो गांवों की मात्रा बता, और गांवों में भी अधिकांश माताएं। तो हमने कहा भाई उसका तो कारण ये है कि उनके अंदर कुछ कोई असंतोष होता है, कोई अपने को कुछ विशेष दिखाने की बात होती तो उनको देवी का आवेश हो जाता है, और भूत प्रेत का आवेश तो एक दुर्बलता है। तो ये दुर्बलता के कारण होता है, तो बुद्धि की दुर्बलता है। तो ये सब क्या है? आविष्ट बुद्धि है, संस्काराक्रांत। तो संस्कारों से आक्रांत बिचारी बुद्धि परेशान रहती है। तो क्या करे, कैसे विचार करे, तो कैसे हटाए? तो यथार्थ का ज्ञान उसे दो, बुद्धि को। तो वो सब जो मूर्खता की बातें हैं, अविद्या की बातें हैं, वो अपने आप हट जाएंगी। इसलिए हम लोग देखते हैं कि सर्वत्र सत्संग की महिमा कही जाती है। श्री कृष्ण भगवान तो सारे श्रीमद् भागवत में नमाम रोधयति योगो करके और सबका खंडन करते हैं। योग आदि कोई मुझे पकड़कर नहीं रख सकते हैं। यथा वरुंधे सत्संगम, जैसे कि मैं सत्संग से पकड़ में आ जाता हूं, भगवान आपकी मुट्ठी में, हस्ता मलकवत। तो कहा कि जैसे हाथ में आंवला ले ले, ऐसे सत्संग की महिमा से परमात्मा आपके पास आ जाते हैं। संस्कार जो बुद्धि को अभिभूत करते हैं और विवेक को रंग देते हैं, अब विवेक को भी रंग देते हैं। तो विवेक को जब रंग देते हैं तो आप अपने विवेक को सिद्ध करते रहते हैं। हमारा विवेक ठीक है, हमारा विवेक ठीक है कि हमने राम की उपासना की, तुम्हारा विवेक ठीक नहीं है, तुमने शंकर की उपासना की। इस प्रकार से एक झगड़ा सा चलता रहता है। तो शुद्ध बुद्धि क्या है वह भी हम समझ ही नहीं पाते कि शुद्ध बुद्धि किसे कहते हैं। तो कहा कि अप्राप्ति जो है परमात्मा की, यथार्थ सत्य की, ब्रह्म की, वह कल्पित है। कल्पित है क्योंकि प्राप्ति ही जब आपका आत्म चैतन्य है तो प्राप्ति है। थोड़ी कि आप सत्संग में आते हैं तो उसे कहीं बैंक में रखकर आते हैं आत्मा को, तो प्राप्त ही है। आप कहीं दूसरे काल में छोड़कर नहीं आते। कहा कल सुबह आत्मा हमारे पास आया था और आज सुबह आत्मा आया ही नहीं, ऐसा भी नहीं होता। अथवा प्रेमपुरी आश्रम में हम जाते हैं तो आत्मा प्रकट होने लगता है और घर में कहा वो लुप्त हो जाता है। तो ऐसा आत्मा नहीं है, आत्मा तो आपको प्राप्त ही है। तो आत्मा की यथार्थ सत्य की अप्राप्ति बुद्धि में कल्पित है। तो इसके निवारण के लिए कल्पित प्राप्ति लाई जाएगी और वो कल्पित प्राप्ति आपको कौन देगा? कहा कि आचार्य और आगम। आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, है ना, इस सुंदर एक कविता है। आचार्य आगम संस्कृतेन मनसा, उसके द्वारा आप कल्पित से कल्पित को निवृत्त करेंगे। आपस में समसत्ता जिनकी, लखी साधक बाधकता तिनकी। समसत्ता के एक कल्पित को हटाने के लिए दूसरा कल्पित चाहिए। तो इसके लिए मन को संस्कार से रहित करना। तो यह जो ब्रह्म विद्या है इसका संस्कार ऐसा प्रबल होता है कि पूर्व के संस्कारों को तो हटाता ही है और स्वयं का भी संस्कार नहीं पड़ने देता। ऐसा नहीं तो द्वैत रहेगा। तो उसका भी संस्कार से हम लोग व्यवहार चला लेते हैं, लेकिन परमार्थ सत्य में यह भी भिन्न नहीं रहती। कहियत भिन्न न भिन्न, सीता जी की वंदना है तो उसमें कहा कहियत भिन्न न भिन्न, कहने को भिन्न लेकिन भिन्न नहीं। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा, ब्रह्म सूत्रों में भी ये बात कही गई। तो जब संस्कार रहित मन से प्राप्ति होगी तो तब तो बात बनेगी, नहीं तो कहेंगे हम समाधि लगाकर प्राप्त कर लेंगे, तो समाधि भी संस्कार जन्य होती है। आप कितने दिनों तक उसके लिए प्रयास करते हैं, फिर उसमें भी कितने भेद होते हैं, वितर्कानुगत इत्यादि, आनंदानुगत, बहुत प्रकार समाधि के बन जाते हैं, इसलिए कहा कि वह भी उपाय नहीं। आचार्य और आगम संस्कृतेन मनसा, यह उपाय है। तो तत्व का जब निरूपण होगा, कहा शून्य शून्य विवर्जितम, समम तत्वम न जानन्ति द्वैताद्वैत विवर्जितम, अर्थात अद्वैत के भी संस्कार नहीं पड़ने दिए जाएंगे, ऐसी युक्ति एक शैली है। शून्य अशून्य से विलक्षण अद्वैत तत्व है। अब कहा कि संस्कार पड़ते जाते हैं, अब जब वैराग्य होता है तभी संस्कार शिथिल होने लगते हैं। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगे गए, हम ही भोग लिए गए। तो आपके विवेक जागृत हो जाता है। विवेक और वैराग्य परस्पर एक दूसरे को पुष्ट करते हैं, ये बात आप जानते होंगे। तपो न तपता वयमेव तपता, रोटी नहीं खाई गई, रोटी ने ही आंतों को खा लिया। दांत से चबाया नहीं गया, अन्न ने ही दांतों को चबा लिया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तो यह जो ज्ञान स्वरूप एक रस है, इसके लिए कह रहे हैं कि नेह नानास्ति किंचन, इसमें नाना तो इसमें अनेकता कुछ भी नहीं है, अनेकता नहीं है, और केवल यह हमें नाना बनके लुभाता रहता है। जैसे कोई ठग आए और लुभाकर ले जाए, कुछ आपको बेवकूफ बनाकर ठगी करके और ले जाए, ऐसे यह हमें लुभाता रहता है। यह मृत्यु का रूप है, यह अध्यारोपित है, ऊपर से थोपा गया है। तो कहते हैं मन के द्वारा ही एक रस, भाष्य में थोड़ा सा, ये एक रस जो तत्व है उसमें वो सब कुछ आत्मा ही है, अन्य कुछ भी नहीं है। आपते चा नाना तो प्रत्युपस्थापिका काया अविद्याया निवृत्तत्वाद इह ब्रह्मणी नाना अस्ति किंचन अणुमात्रमपि। का जब तुम ब्रह्म तत्व को प्राप्त कर लोगे तो नानात्व को कौन स्थापित कर रही? अविद्या, हमारी नासमझी, हमने जो खोज नहीं की, अनुसंधान नहीं किया, विवेक विचार नहीं किया, उसके कारण हमें ये नाना तो दिख रहा है। और आप समझते भी हैं तो उस पर डटे नहीं रहते, क्यों? क्योंकि संस्कार बलवान रहते हैं, तो उनका निवारण होना चाहिए। तो ये अविद्या है, ये अविद्या के निवृत्त हो जाने से ब्रह्म तत्व में अणु मात्र भी अनेकता नहीं है, एक है वह तत्व, उसमें अनेकता नहीं है। यस्तु पुनः अविद्या तिमिर दृष्टिम न मुंचती, लेकिन कोई मूर्ख होता है, ये अविद्या की जो अंध दृष्टि है, अंधकार वाली दृष्टि है, उसको नहीं छोड़ता है। तिमिर रोग से ग्रस्त उसकी दृष्टि है, और दो बात बताई थी, एक दृष्टि भेद दृष्टि और दूसरा उपाधि का स्वभाव। तो ये भेद दृष्टि और इंद्रियों की उपाधि से अनेकता दिखती है, उसको हम सच मानते हैं, और दृष्टि हमारी भेद वाली है। तो कहा ये जो तिमिर दृष्टि है, इसको वह बेचारा छोड़ता नहीं है, तिमिर रोग से ग्रस्त उसका उपचार नहीं कराता, वो रोग लगा हुआ, तो नाना तो ही देखता है, अनेकता ही देखता है, इसलिए वो मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता रहता है, जन्म मरण को प्राप्त होता रहता है। तो उसी ब्रह्म का वर्णन आगे 12वें और 13वें मंत्र में कर लेंगे। 2 मिनट में हम लोग केवल मंत्र देख लेते हैं। तो कहा कि वो उसके लिए कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते एतद्वैतत्। तो कहा कि अंगुष्ठ मात्र माने परिमाण, नाप तौल वाला पुरुष जो है, आत्मा चैतन्य है, वह शरीर के मध्य में स्थित है, और ईशानो और वही भूत और भविष्य का ईशान है। ये ईशानो भूत भव्यस्य पहले भी आ चुका है, तो तो इसको आप हम लोग कल थोड़ा थोड़ा समझ के पूरा करेंगे। तो कहा ईशानो भूत भव्यस्य, भूत और भविष्य उसका और वर्तमान का शासक होकर रहता है, न ततो विजुगुप्सते, ये भी एक अन्य मंत्र में आया है। तो कहा कि इसलिए वो शरीर की रक्षा नहीं करना चाहता, एतद वै तद, निश्चय यही वह आत्म तत्व है। और अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिवा धूम का, यह अंगुष्ठ प्रमाण वाला जो पुरुष है, अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है, अर्थात इसके द्वारा छोटा है ऐसे बता रहे हैं, शरीर में ही है ऐसे बता रहे हैं उस चैतन्य को, लेकिन वो बहुत विशाल है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति, जैसे गीता में भी भगवान कहते हैं शरीर में है, देहे अस्मिन् पुरुषः परः, तो वो यहीं से लेते हैं। तो कहा अंगुष्ठ मात्र पुरुष वो ज्योति इव अधूम का, ऐसी ज्योति जिसमें धुआं नहीं हो, ऐसी ज्योति वाला है। और फिर वही बात कही, ईशानुभूत भव्यस्य स एवाद्य सऊषः, वह भूत भविष्य का सबका शासन करने वाला आपका चैतन्य इतना विशाल है, अनंत है, और आपकी आत्मा की आयु अनंत है। स एवाद्य सऊषः, वह वर्तमान काल में है, अद्य माने अभी है, और श्वः माने कल वाला, तो अद्य माने आज वाला, वर्तमान का अद्य आज, और कल के लिए कहेंगे श्वः, तो वो अभी भी है, आज भी है और कल भी है, तो उसकी निरंतरता बताते हैं, उस विज्ञान एक रस की निरंतरता बताते हैं। एतद् वै तद्, निश्चय रूप से यह वही है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।